भगवान सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है और ज्ञान स्वरूप है। ये उसी का आनंद आया। ना समझी पर हंसी आई तो उसी को आई। हाथ ऊपर कर दिया, जो कल आए थे आज नहीं आए तो हाथ ऊपर करो, तो हाथ ऊपर कर दिया। ये हंसी आई, सुखद लगी ना। एक होता है सुख, दूसरा होता है दुख, दोनों में ख है। ख मतलब खम, आकाश को बोलते हैं। आकाश भी तीन होते हैं, आंखों से दिखता है इसे भूताकाश बोलते हैं। भूताकाश की खबर देता है उसको चित्ताकाश बोलते हैं, और चित्त भी बदलता है, उसकी जो खबर जानता है वो परमात्मा स्वयं चिदाकाश है। मोकलपुर के बाबा बड़े उच्च कोटि के संत थे, 14-14 मील चलकर जाते थे अखंडानंद सरस्वती जी। कभी वो सत्संग करते बोलते, कभी ऐसे ही। तो उनके पास एक आया साधक, बाबा जी आप पहुंचे हुए संत हैं, मुझे ईश्वर का दर्शन कराओ। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। बाबा ने सुना अनसुना कर दिया, और वो तो भूखा रहा। एक दिन बीत गया, प्यासा रहा, दूसरा दिन शुरू हुआ। दूसरे दिन की शाम हुई, बाबा ने मानो उसका सुना अनसुना कर दिया। 2 दिन बराबर पूरे हो गए तो बाबा ने गाली देते हुए कहा, संतों की गाली भी प्रसाद ही होती है, बुरी नियत से गाली नहीं बोलते हैं, अपने भाव से। गाली देके जोर से डंडा दे मारा, भगवान का दर्शन करेगा। प्रभास्मी सुशी सूर्यो, सूरज और चंदा की प्रभा मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, वायु में वायु तत्व मैं हूं, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी में पुण्य गंध मैं हूं। ये अपना स्वरूप बताया, वो तो मानता नहीं। नया कौन सा भगवान चाहिए तेरे को? डंडा तो लगा, बाहर से लोगों ने देखा वो तो बेचारा, लेकिन उसकी ग्रंथि खुल गई, सब ईश्वर ईश्वर दिखने लगा। हाथ पैर वाला नहीं, सब वासुदेव है। ऐसा मेरे को भी हुआ, मेरे को बिना डंडे हुआ। वास्तव में सब वासुदेव है, जड़ चेतन जीव जगत सकल राम मई जाने। सब वासुदेव की दृष्टि अगर लाखवा हिस्सा, लाख आदमी में एक आदमी, सब वासुदेव वासुदेव सोचे तो पृथ्वी स्वर्ग में बदल जाएगी, और शांति शांति में बदल जाएगी, कांटे फूल में बदल जाएंगे, वैर प्रीत में बदल जाएगा, राग द्वेष सूझबूझ में बदल जाएगा। वास्तव में सब वासुदेव वासुदेव। जैसे रात को सपने में हम ही हम होते हैं, फिर उसमें कई अच्छे लोग भी दिखते हैं हमारे सपने में, कई बुरे लोग भी दिखते हैं, कई अच्छी चीजें भी दिखती है, बुरी चीजें भी लगती है, बस्ती भी दिखती है, मरुभूमि भी दिखती है, और बस्ती की गटर और नालियां भी दिखती है, लेकिन है तो वही हमारा चैतन्य, एक ही अनेक रूप बना है। ऐसे ही है सब, ऐसे रामकृष्ण परमहंस ने मांग के खाने वालों को देखा, बोले ये भी तो नारायण है, दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण का भंडारा करो। भंडारा हुआ तो आज तो भरपेट भोजन मिलेगा पत्तल पे बैठ के, जैसे और संत मंडलेश्वर खाते हैं, ऐसा दरिद्र नारायणों को आज भोजन है। तो बैठने के लिए लाइन लगी, तो एक ऐसा व्यक्ति आया कि वो दरिद्र है, हमारे सामने खड़ा, वो सब ने धकेल धकेल के पीछे कर दिया। अब पंगत अंदर बैठी पंडाल में, उसको तो आने ही नहीं देवे कोई। तो रामकृष्ण की नजर उसी पर पड़ी जो सबके धुतकार के पात्र बने थे। उसके चेहरे पर कोई फरियाद नहीं, कोई शिकन नहीं, बित बित करते आए। वो ऐसा उनका भेख था कि भिखमंगों को भी लगा कि ये हमारे हमारी बराबरी कैसे कर सकता है? हमारे सामने विद्युत ने उनको पंगत में बैठने देने का व्यवस्था ही बंद हो गई। तो वो जो भिखमंगे खाके पत्तले फेंकने गए तो कुत्ता दौड़ के आया और वो जो दुत दुत होकर उपेक्षित हो गए थे वो भी वहीं चले गए। भिखमंगों की पत्तल में जो जूठन बची है वो कुत्ता भी चाट रहा है और ये भी खा रहा है, और एक हाथ इनका भोजन में और एक हाथ कुत्ते के गले में। रामकृष्ण देखकर दंग रह गए, कितना अपमान हुआ, कोई प्रतिकार नहीं किया और भिखमंगों की जूठी पत्तल से खा रहे। गौर से देखा, समझ गए कि ये तो परमहंस परमहंसों के परमहंस। ए हृदय तू बोलता था ना सिद्ध पुरुष, वो देख कुत्ते के गले में हाथ डाल के पत्तलों का जूठन खा रहा है, देख सिद्ध पुरुष। उसका मतलब ये नहीं कि सभी ऐसा करें तभी सिद्ध माने जाएंगे, ऐसा नहीं समझना। जा उनसे पूछो ईश्वर का क्या स्वरूप है, नम्रता से श्रद्धा से जाना। ये पहुंचे हुए हैं तो हृदय गया, प्रणाम किया। वो जो जूठन भिखमंगों की जूठन की पत्तले सफा कर रहे थे और कुत्ते के गले में हाथ था, उनको प्रणाम किया। अरे महाराज, आत्मसिद्ध पुरुष के लक्षण क्या, आत्मसिद्धि का? अरे बोले, आत्मसिद्धि क्या, जैसा गंगा जल ऐसा नाली, एक ही ब्रह्म का, जैसा मान तैसा अपमान, जैसा साफ सुथरा ऐसा ही, सब एक ही तो है। इतना ऊंचा ज्ञान और दिखते कैसे? ऐसे कहीं कहीं महापुरुष का मुझे पता चला तो मैं गया था उनके चरणों में दर्शन करने, ऐसे ऐसे पुरुषों को भी देखा, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसी गंदगी में रहे वो ही महापुरुष है। पागल भी रहते, धूर्त भी ऐसा कर सकता है। उसको पहचानने की आध्यात्मिक आंख चाहिए। गुजरात में कप्पड़वंज है, तो कप्पड़वंज में एक पोस्ट मास्टर था, उसको कुछ अनुभूति हुई थी, मैंने सुना था उनकी सराहना, तो मैं उनके पास गया, उनके घर। घर छोड़ के जब साधु बना था तब की बात, तो उन्होंने बोला कि कप्पड़वन में एक और मूर्ति है। मैं क्या कहा है, बोले महापुरुष है। महापुरुष का मतलब ये नहीं, साधु संत तो है ही है महापुरुष, लेकिन कैसे कैसे महापुरुषों के पास में गया। बोले वो मोची का व्यवसाय करते हैं फुटपाथ पे, फलानी जगह पे, तो मैं तो वहां फुटपाथ पे गया और जूता सी रहे थे, तो मैं जाके खड़ा हो गया, तो मेरे सामने देखा, मैं उनको देखकर थोड़ा ऐसा किया और मैं हंसा। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो उस मोची ने कहा हो रहा है तो माया में हो रहा है, आप तो ज्यों के त्यों हैं। खूब हंसा, मैं भी हंसा, फिर थोड़ी बातचीत हुई। अब भगवान कब किस समय किसके हृदय में प्रकट हो जाए। सो जाने जासु देहु जना ही, जानत तुम ही हो जाए। वो उसे ही वरण करता है जो उसको चाहता है, उसके विषय में श्रवण करता है, उसके सिवा सब कुछ फीका लगता है, उसको वो वरण करता है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी, नौ निधियां थी, लेकिन हनुमान जी को तड़प थी कि पूर्णता का, परमेश्वर तत्व का साक्षात्कार, जो सृष्टि के आदि में था, अभी और बाद में भी रहेगा महापरलय के बाद, उस पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हनुमान जी राम की सेवा में लग गए, बिन शर्ती शरणागति। हनुमान जी साधारण तो नहीं थे, बाल ब्रह्मचारी थे। राम जी और लखन को कंधे पे उठा के उड़ान भरते थे, रूप बदल के राम जी की परीक्षा ले रहे थे। और राम काज बिन कहां विश्रामा, ऐसे कर्मनिष्ठ भी थे, निस्वार्थ कर्म योगी थे, भक्त भी थे। ज्ञानी नाम अग्रगण, ज्ञानियों में अग्रगण हनुमान जी माने जाते थे। लेकिन वे भी इस तत्व ज्ञान को पाने के लिए बिन शर्ती शरणागति राम जी के लिए। और सारी रामायण के विषय में तो आप लोग जानते हैं, जब अयोध्या में श्री राम जी राजाभिषेक हुआ और विभीषण ने कीमती अति कीमती हीरे मोती जो भी होंगे अत्यंत कीमती हार दिया उनको भेंट में, तो राम जी ने वो हार बड़े में बड़ी ऊंची सौगात हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी वो मोती तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। तो जो जवेरी थे वो सोचे कि ये इनको तो जमरूक दे देते, सेव फल दे देते, केले दे देते एक डजन, ये हीरे क्या जाने। हनुमान जी फेंक रहे इतने कीमती हीरे, लेकिन हनुमान जी जो जानते थे वो जवेरी कुछ नहीं जानते थे। और जिसमें पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव ना हो, जिसमें अंतरात्मा की तृप्ति ना हो, अंतरात्मा की चमक ना हो, ये चमकीले पत्थर मेरे किस काम में आए। एक एक उठ तोड़ तोड़ के देखते, तोड़ते जाते फेंकते जाते, इसमें तो मेरा स्वरूप नहीं दिखता है। तो राम जी समझ गए कि हनुमान जी की भूख जगी, सीता जी को कहा कि तुम उपदेश दो, माया से पार होना है तो माया के रूप का उपयोग किया राम जी ने, सीता जी ने उपदेश दिया। बाकी का राम जी ने भी कुछ, फिर राम जी ने पूछा हनुमान जी अब हम कैसे लगते तुमको। प्रभु जी व्यवहार दृष्टया स्वामी तो सेवको हम, आप स्वामी हो मैं सेवक हूं, सृष्टि दृष्टि से आप ईश्वर है मैं जीव हूं, और तत्व दृष्टि से तवैवा हम, जो तुम हो वो मैं ही हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। हनुमान जी तुमको पूर्ण बोध हो गया, ब्राह्मी स्थिति हो गई, पूर्ण गुरु कृपा मिली, जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश, किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरत दी सागाव पधारे, मृत गाय दिया जीवन दाना, हम से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण हरि, मेले जाते कभी मत करे, तब से दे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते, जो आया उतार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया, कितने मरना सन्न जिलाए, प्रसन्न मास और नारायण नारायण। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे, जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति मतलब गहरी नींद आई चली गई। लेकिन ऐसा कोई तत्व है जो उसको जानता है, वो कौन तत्व है? जागृत कल का जागृत अभी नहीं है, रात का स्वप्न अभी नहीं है, रात की गहरी नींद अभी नहीं है, लेकिन कोई तो है जो सपने को, गहरी नींद को और कल की चेष्टाओं को जानता है। वो कौन है? वो कौन है? खोजोगे खोजोगे तो बोलोगे मैं, और मैं का असली रूप और एक आभास रूप दो होते हैं। जैसे सूरज एक असली रूप और दूसरा आईने में सूरज दिखता है, अथवा धूप का एक व्यापक रूप और दूसरा प्रतिबिंब आकाश आभास, ऐसे चंद्रमा का आकाश आभास। तो कढ़ाई में तुम पकोड़े डालोगे तो पकोड़े तो उखलते हुए तेल में पकोड़े तो पक जाएंगे, लेकिन पकोड़ों पकते हैं उसी कढ़ाई में चांद दिखता है, चांद का आकाश दिखता है, वो पक जाएगा क्या? उसको गर्मी लगेगी क्या कढ़ाई की? नहीं। जब चांद जो दिख रहा है उसको गर्मी नहीं लगेगी उखलते तेल की, चांद के आकाश को तो चांद को क्या लगेगी? ऐसे ही व्यापक परब्रह्म परमात्मा तो है ही है, लेकिन अंतःकरण में उनका आकाश पड़ता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब पड़ता और अंतःकरण को और शरीर को मैं मान लेता है, जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब कढ़ाई को तेल को मैं मान लेवे, तो कढ़ाई तपे तो बोले मैं तप रहा हूं, तेल उखले तो बोले मैं उखल रहा हूं, तो उसका तादात्म्य हुआ, अध्यास हो गया, मान्यता ही हो गई, असली में नहीं। तो वो जो चिदाभास है शास्त्र में वेदांत में उसको चिदाभास बोलते हैं। तो जो चिदाभास को भी अग्नि नहीं तपा सकती, तो चिदाभास के मूल चंद्रमा को कहां तपाएगी? ऐसे ही बोलते मेरा तो आत्मा जलता है, आत्मा नहीं जलता, बेवकूफी के कारण उसके साथ तादात्म्य हो गया। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब कढ़ाई के साथ अपना तादात्म्य कर ले, अपनी मान्यता रख ले, ऐसे है तो पोता भी मार, लेकिन दादी ने तादात्म्य कर दिया, मैं तो मर गई बाबा, नींद भी नहीं आती, क्या हुआ मेरा जुग्गू, सर्दी हो गई, नाग वेद आई, उसकी चिंता बहुत है। तो जुगू जुगू जैसे तो कई नाग बहने वाले छोरे हैं, लेकिन ये मेरा जुगू है। तो अपनेपन से ममता आ गई, मकान दो दिन पहले बेच दिया और आई आंधी तूफान और बारिश, हो मकान ढह गया, पैसे अपने पास आ गए, अब दुख नहीं होगा और खुशी होगी कि अच्छा हुआ निकल गया, बच गए, नहीं तो मुसीबत थी। और जिसने चार दिन पहले मकान को अपना नहीं माना था, अब दो दिन पहले मकान अपना मान लिया था, आने वाले थे सुबह रहने को, रात को मकान रह गया, उसको दुख होगा क्योंकि तादाद में हो गया। ईश्वर की सृष्टि में तो मकान वही का वही है, लेकिन जिसका तादाद में था, जिसकी जितनी ममता उतना उसका सुख दुख हर्ष शोक, सुख होकर भी मिट जाता है, दुख होकर भी मिट जाता है, उसको जानने वाला तो चिदानंद परमात्मा ज्योंका त्यों रहता है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, धार्मिक होते हैं, तीर्थ में नहाते बहुत ऊंची चीज है, और तीर्थ का फल यह है कि आत्म तीर्थ में ले जाने वाले सत्संग में पहुंचे, वो भी मिला, लेकिन वो जो तादात्म्य मानने की आदत है, उस तादात्म्य से, तादात्म्य मतलब उनसे एकत्व, तो शरीर से एकत्व मानते तो शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मान लेते हैं, मन से एकत्व मानते तो मन के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, चित्त से एकत्व मानते तो चित्त की चिंता को अपनी चिंता मान लेते हैं। तो कैसा करते हैं, जैसे कढ़ाई में आया हुआ चंद्रमा एकत्व मान ले, तेल से, पकोड़े से, कढ़ाई से, ऐसे ही ये जीव चेतन विमल सहज सुख राशि, ये चेतन है, विमल है, सहज सुख राशि है। बंध्यो जीव मरकट की नाई, जैसे मरकट मना बंदर सकड़े बर्तन को गाड़ देते शिकारी लोग और उसमें खजूर छुआरा गुड़ के ढेले मिश्री और भी कुछ मूंगफली फोफे बड़ी वो बंदर देखे वो ऐसे डाल देते हैं सकड़े मुंह के बर्तन में। हाँ वो छुप जाते हैं और बंदर जाते हैं लेते तो मुट्ठी उनकी बंद जाती है। मुट्ठी बंद जाती तो अब वो पतले सकड़े मुंह का था मुट्ठी बंद गई अब हाथ निकलता नहीं तो समझते हमारे को किसी ने पकड़ लिया खुद ही मुट्ठी बांध लिया और पैर पछाड़ते दूसरा हाथ पछाड़ते पूछ पछाड़ते सिर पटकते चीखते सब कुछ करते घबरा कर डबल भी कर लेते सिंगल भी कर लेते लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते। करना क्या चाहिए कि जो मुट्ठी पकड़ी है वो खोल दे और फिर एक एक दाना करके खाए तो सब माल उनका लेकिन वो नहीं करते। तो मुट्ठी पकड़ते तो क्या मुट्ठी उनकी बनी रहती है नहीं वो शिकारी आते बंदर फंसाने वाले उसके गले में फंदा बांधते और मुट्ठी पर जोर से हाथ पे डंडा मारते तो मुट्ठी तो मुट्ठी खुल जाती लेकिन फिर घर घर भीख मंगवाते रहते। ऐसे मेरा 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 तो पकड़ते तो नहीं है मृत्यु रूपी मदारी आता और सब छुड़ा देता है लेकिन मेरे मेरे की वासना न छूटने के कारण फिर उसी माहौल में बेचारा भटकता है। तो मेरा मेरा कहने की सत्ता उस चैतन्य से आती है। उस चैतन्य को मेरा माने तो बेड़ा पार हो जाए लेकिन चैतन्य की सत्ता से और चीजों को मेरा मेरा मानता है और चैतन्य को मूल को नहीं जानता। जैसे प्रतिबिंब है कढ़ाई में आता तो उसी को तादात्म्य करे और मूल चंद्रमा को नहीं जाने तो दुखी होगा और मूल चंद्रमा को जाने कढ़ाई कढ़ाई का काम करे पकोड़े पकोड़े का काम करे पकोड़े समोसे जो भी मान लो। ऐसे ही दुख मन में आया चिंता चित्त में आई बीमारी शरीर में आई हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। इतना अपमान हुआ उस संत का भिखमंगों ने अपमान कर दिया चित्त में दुख नहीं हुआ कुत्ते के गले में हाथ डाल के और पत्तले जूठी खा रहे लेकिन मन में ग्लानी नहीं होती सब वासुदेव है। जड़ चेतन जीव जगत सकल राम मई जान। तो इसमें भी कई प्रकार के महापुरुष होते हैं ये परमहंस कोटि के हैं नाय नाय। ऐसे परमहंस संत को मैंने अच्छी तरह से नजीक से देखा कि कई वर्षों से पेड़ के नीचे बैठे तो बैठे कपड़े भी महीने दो महीने चार महीने कोई लोग आके जबरदस्ती बदल देवे तो बदल दे। ऐसे एक परमहंस मुसलमान भाई को भी मैंने देखा और दूसरे हवा पीकर जीने वाले पेड़ के ऊपर जोगियों से भी मेरा परिचय हुआ। वायु पी के रहते हैं पानी पीने की जरूरत नहीं रोटी खाने की जरूरत नहीं। हरिद्वार सप्त सरोवर की झाड़ियों में अब तो वो झाड़ियां कम हो गई पहले उधर बहुत साधु रहते थे सब पेड़ पे नहीं रहते थे अलग अलग झोपड़ियां थी एक साधु पेड़ पे ही रहते थे तो उनसे मैं 135 साल के थे। दूसरी एक साध्वी माई थी माता जी वाह वाह वो भी अभी उसका शरीर शांत हुआ 138 साल की उम्र थी उसकी। उसने बताया कि मैं बद्रीनाथ में 12 महीना रहती थी और 25 साल रही वो सच्ची बात। तो जब पट खुलने वाले थे तो गंगोत्री से तीन साधु आकाश मार्ग से आए पद्मासन पे बैठे योग सिद्धि से बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए उतरे तो पूरी बद्रीनाथ की बजा बंद हो गई। उसने आज से मेरे को 30 साल पहले कहा होगा 30 और 25 55 साल पहले की घटना होगी 60 साल पहले की। तो शास्त्रों में तो जानते हैं कि योगी आकाश गमन करते हैं ये वो लेकिन ऐसे योगी पुरुष कभी कहीं होते भी हैं। दूसरा ये शरीर में रहे और इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश हो उनकी घटना तो यहां मैं पहले सुना के गया था जो तीर्थ में कष्ट सहकर अपना नियम करते और दान का नहीं खाते दुराचार नहीं करते व्यभिचार नहीं करते तीर्थ के नियम पालते हैं उनके तो एक ही जन्म में कई कई जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं और कई ऊंचे लोगों की प्राप्ति भी हो जाती है। कुंभ स्नान का तो बड़ा महत्व है। तो खैर अपन बात करेंगे उस राजा के मृतक शरीर को देखकर गोरखनाथ द्रवित हो गए कि गुरुजी इनको जीवन दान मिले। गुरुजी ने क्षण भर ध्यान किया, बोले वत्स ये धर्मात्मा राजा था और ओमकार का जप करता था, इसीलिए इस ब्रह्मांड को लांघ कर वो चला गया है। इसको जीवित करना अपने वश का नहीं रहा, इस ब्रह्मांड में होते तो मैं बुला लेता। तो जोगी गोरखनाथ ने कहा गुरुजी आज्ञा दीजिए मैं इस राजा में प्रविष्ट हो जाऊं और रानी को एक आध बेटा मिल जाए, 12 साल तक रहूं फिर उस बेटे को राजगद्दी दे के आऊं। बोले तू युवा योगी इस झंझट में मत पड़, ये काम मैं कर लेता हूं जो आज्ञा गुरुजी। मच्छंद्रनाथ ने अपना सुव्यवस्थित जगह पर शरीर रखा और सूक्ष्म शरीर से राजा में प्रविष्ट हो गए। राजा हिला, मातम मचाने वाली रानी के जीवन में तो क्या खुशी हुई होगी कल्पना करो, पब्लिक भी खुशी हुई। अब मच्छंद्रनाथ का सूक्ष्म शरीर, तो जो परमात्मा तो व्यापक है लेकिन जहां जहां आईना करते वहां वहां प्रतिबिंब होता है, ऐसे जहां जहां अंतःकरण होता है वहां परमात्मा का रिफ्लेक्स प्रतिबिंब पड़ता है। तो अंतःकरण कैसा होता है, 5 कर्म इंद्रिया सूक्ष्म होती है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो ये नेत्र इंद्रिय के रहने का गोलक है लेकिन रूप तन मात्रा सूक्ष्म होती है। ऐसे ही कान जो है श्रोत्र इंद्रिय के रहने की जगह है। तो कान तो होते हैं लेकिन श्रोत्र इंद्रिय कमजोर होती है, श्रोत्र इंद्रिय काम नहीं करती तो बहरा हो जाता है। नेत्र इंद्रिय काम नहीं करती, पानी सूख गया तो आंख होते हुए भी आदमी नहीं देखता। तो इनको सूक्ष्म तन मात्राएं कहते हैं। ज्ञान इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, हाथ पैर जीभ बोलती तब कर्म इंद्रिय है, चखती है तब ज्ञान इंद्रिय है, ऐसे एकी बेकी की ये कर्म इंद्रिया है। तो 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय, और हम श्वास लेते प्राण लेकिन 5 विभागों में बदल जाता है। तो प्राण अपान व्यान उदान समान लेते तो प्राण, लेकिन नीचे से श्वास जब गंदी हवा फेंकते तो अपान होता है, पीते पानी तो अलग कर देता है, खाते तो अलग कर देता है, उसे उदान कहते हैं। चौथा होता है व्यान और 5वां होता है पूरे शरीर में प्राण व्यापक, उसको समान बोलते हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 15 हो गए मन और बुद्धि तो 17, अथवा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि बोलो तो चित्त अहंकार उनसे जोड़ देते तो 17 होते और अलग से लो तो 19 तत्व, उसको बोलते सूक्ष्म शरीर। तो घड़ा भी जिधर भी जाता है तो आकाश उधर, अब घड़ा आपने यहां से उठाया दूसरी जगह ले गए तो यहाँ का आकाश दूसरी जगह नहीं ले जाओगे, आकाश तो आर पार हो जाता है, जिधर भी जाओगे तो घड़े में आकाश मौजूद रहेगा। चाहे कांच का घड़ा हो, चाहे मिट्टी का घड़ा हो, चाहे लोहे का घड़ा और सील बंद हो, लोहे में से भी आकाश प्रसार हो जाएगा, आकाश भरपूर है। ऐसे ही चिदाकाश परमात्मा भरपूर है, जिधर सूक्ष्म शरीर जाएगा उधर परमात्मा चेतना तो मिलेगी। सूक्ष्म शरीर में अपने अपने संस्कार होते, अपने अपनी वासना होती, उसके अनुसार उसको सत्ता, सत्ता तो भगवान की ज्यों की त्यों है, वासना के अनुसार वो चेष्टा करता है। जैसे बैटरी वाली गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो कार, तो उसमें चलने का पावर तो होता है लेकिन ड्राइवर की जैसी जैसी इच्छा होती है उधर उधर गाड़ी घूमती है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की जिधर जिधर वासना होती है उसी उसी शरीर में उसी उसी वातावरण में जाता है। तो मनुष्य को बड़ी स्वतंत्रता दी है भगवान ने कि अपनी इच्छा के अनुसार लोक लोकांतर में जाता है। ये जो इस ब्रह्मांड के बिना कई ब्रह्मांड है तो उन ब्रह्मांडों की व्यवस्था अलग है। इधर तुम्हारे 1000 साल बीत गए और उधर 12 दिन भी नहीं बीते, ऐसे ब्रह्मांड भी है। योग वशिष्ठ में आती है कथा है। जैसे तुम्हारा एक हफ्ता भी नहीं बीता लेकिन तुम्हारे शरीर में जो बैक्टीरिया है उनकी तो कई पीढ़ियां बीत गई, ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन में तो 14 इंद्र बदल जाते और मनुष्य तो कितने ही बदल जाते होंगे। देवताओं का एक दिन होता है तो हमारा एक साल बीत जाता है। तो देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं लेकिन उन सभी व्यवस्थाओं की गहराई में ये भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश, ये चिदाकाश परमात्मा सब में ज्यों के त्यों है। तो अपने को पंच भौतिक शरीर ना माने, अपने को चित्ताकाश ना माने लेकिन चित्ताकाश में जो विचार आते हैं अथवा भूताकाश में जो कुछ होता है वो सब जिससे दिखता है वो एक रस आत्मा अपने को जाने तो व्यापक ब्रह्म में एकाकार हो जाएगा, अनंत ब्रह्मांडों में आत्मवेता फैल जाते। ये जो अपने को सूरज दिखता है ना वो आकाश गंगा के सूरजों से सबसे छोटा सूरज है लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जब प्रलय होने को होता है तो आकाश गंगा का दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे 12 सूरज तपते हैं। दूसरा सूरज आते ही प्राणी जात तो स्वाह हो जाती। जिसको विज्ञानी बोलते आकाश गंगा वो अपने शास्त्रों में तप लोक से वर्णित है, औगी और तपनी तपनी। आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज हैं, अग्नि लोक तप लोक बोलो। मेरे गुरुजी बोलते थे लोग ये विज्ञानी बोलते हैं कि चंद्र में जा क्या, चंद्रलोक तक नहीं गए, ये तो ग्रह तक गए, चंद्र ग्रह तक, चंद्रलोक इन्होंने देखा ही नहीं। मैं गुरुजी के साथ था, मुसाफरी कर रहा था तो किसी भक्त ने पढ़कर सुनाया टाइम्स ऑफ इंडिया कि साईं साईं अमेरिका चंद्रलोक तक पहुंच गया है और एक साल में अमेरिका वहां बड़ा होटल बनाएगा और रिचेस्ट पीपल कैन स्टे देयर विद इन 1 ईयर, धनी आदमी वहां रह सकेंगे। मेरे गुरुजी ने जरा सा अरे बोले कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ो रिचेस्ट पीपल से तो नहीं बना पाएंगे, चंद्रलोक है ही नहीं, तो ग्रह है और साल भर में तो क्या नहीं बना पाएंगे। इस बात को 39 साल हो गए अभी तक अमेरिका ने चंद्रलोक में होटल बनाई ऐसा आपने हमने नहीं सुना। भारत के संतों की कैसी ऊंची पहुंच है, जो करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए खर्च के थक के चुप होके बैठ गए। वो बात लीलाशाह प्रभु जी ने चालू ट्रेन में जान ली थी क्योंकि वो चिदाकाश में थे और वो बेचारे विज्ञानी बुद्धि में होते हैं, मन में होते हैं, बुद्धि में होते हैं। तो बुद्धि मन तो बाहर का जानेगा लेकिन जो स्वयं में बैठे हो तो अनंत ब्रह्मांड का जानेगा। जन्मेजय को भगवान वेदव्यास परीक्षत की कथा, परीक्षत सुखदेव परीक्षत की भागवत में कथा आती ना, तो राजा परीक्षत भगवान के धाम में चले गए तो उनका बेटा जन्मेजय कथा सुनता था और किसी कारण उसने कथा में शंका कर दी तो उसको कोढ़ हो गया। तो फिर व्यास जी के पास गया तो व्यास जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि में समझ ना आए तो उसको झूठा बोलना ये तुम्हारा अपराध है। अब मैं तुमको बोलता हूं कि थोड़े दिन में तुम्हारे पास सौदागर आएगा, उसमें काला घोड़ा तुम्हें बहुत प्यारा लगेगा, तुम लेना नहीं लेकिन तुम लोगे, लो तो बैठना नहीं लेकिन तू बैठेगा, बैठे तो दक्षिण की तरफ मत भागना तू जाएगा और नदी के किनारे एक सुंदरी बैठी होगी तू उसे बात नहीं कर रहेगा करना लेकिन करेगा, बात करे लेकिन घोड़े पर साथ में बिठा कर मत लाना लेकिन तू लाएगा, साथ पे लाए तो लाए लेकिन उसे विवाह मत रचना लेकिन तू विवाह रचेगा। और फिर बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण किसी संत के दर्शन के लिए चले जाएंगे छोटे छोटे छोरे टाइप होंगे, उनके द्वारा तू विवाह का कार्य संपन्न कराएगा। और वो तेरी जो ललना है वो ब्राह्मणों को परोसोगी तो जोर की हवा लगेगी और उसका दुपट्टा उड़कर वो ब्राह्मणों की पत्तल पे गिरेगा। और वो ब्राह्मण छोरे छोरे हैं युवक, हंसी उड़ाएंगे। तू तलवार नहीं निकालना लेकिन तू तलवार निकालेगा, उनका सिर मत काटना लेकिन तू काटेगा, और उसे तुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। संभल सके तो संभल। बोले महाराज आपने कह दिया, अब मैं वो घोड़ा लेने वाला ही नहीं हूं। बोले देखो, एक तो मंद प्रारब्ध होता है, मंद तकलीफ होती है उसको तो आदमी अपने पुरुषार्थ से हटाता है, तीव्र तकलीफ होती है तो भगवान और संत और अनुष्ठान से हटती है, लेकिन तर तीव्र होती है ना तो होनी होके ही गुजरती। देखो तू बच सके तो बच, नहीं बच सका सब वहां। बोले महाराज ने तो मना की, लेकिन आप थोड़ा सा जाते, सुंदरी से बात नहीं करना लेकिन जरा सा करते, घोड़े पे नहीं लाने लेकिन जरा सा ले जाते, विवाह मत रचना लेकिन अब क्या है, ऐसा करते करते सब हुआ। तो चिदाकाश में वो सब पता है, परमात्मा में सदा वर्तमान काल है। ये तो हम मन बुद्धि में रहते ना, इसीलिए काल के तीन विभाग हो गए, जो गुजर गया उसको भूतकाल बोलते हैं, जो आने वाला है उसको भविष्य बोलते हैं, जो अभी गुजर रहा है उसको वर्तमान बोलते हैं। लेकिन ये भूत और भविष्य वर्तमान में ही सिद्ध होते हैं, वर्तमान के बिना भूत और भविष्य का ज्ञान किसको होगा। तो सदा जो वर्तमान है चिराकाश परमात्मा, उसी से भूत और भविष्य होता है। तो परमात्मा में जिनकी स्थिति होती है वो बता देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ था। मेरे गुरु जी कभी ऐसी सी बात बोल देते हैं कि उस समय तो मुझे आश्चर्य लगता था, ये पहली बार आया गुरु जी, लेकिन अब पता चला कि महापुरुषों के लिए सब सहज में है। तो आपको वर्तमान चिदाकाश में ठहराने के लिए मैं हरि ओ तो हरिओम का ह आखिरी में मां, उसके बीच संकल्प विकल्प नहीं होता, भूत भविष्य नहीं होता, वर्तमान स्थिति होती। 15-20-25 मिनट रोज करो तो आप वर्तमान तत्व में चिदाकाश में थोड़ी विश्रांति पाओ, उससे सामर्थ्य आएगा, उसे भगवान का आनंद प्रकट होगा और बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगेंगे। फिर आप तीन पड़े हो चाहे एक पड़े हो, चाहे लालजी महाराज अथवा मेरे गुरुदेव की नाई, स्कूल में एक दिन भी नहीं रुके, हमारे मित्र संत थे एक दिन भी स्कूल में नहीं रुके। मास्टर ने दबाव डाला तो मास्टर की देख करके वापस आए, बड़े अच्छे संत थे। हमारे गुरुजी भी शायद एक दिन रुके होंगे कि नहीं, वो साइन करते थे ना तो मैं देखता था, मैं कह सकता हूँ कि गुरुजी शायद एक दिन दो दिन रुके होंगे कि नहीं। साइन करने में अक्षर लिखने में गुरुजी को समय लगता था, हम तीसरी पढ़े तो हमको समय नहीं लगता, लेकिन गुरुजी कितना पढ़े होंगे, सारी पढ़ाइयाँ जहाँ पूरी हो जाती, ऐसा पढ़े हुए महापुरुष के लिए हम कैसे कह सकते कि गुरुजी नहीं पढ़े थे, सारी पढ़ाइयों के मूल में पहुंचे थे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, हमारी पढ़ाइयाँ आप लोगों की, यहाँ ये ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो गुरुजी उसमें स्थित थे तो उनके लिए तो तुरंत राम सुखदास महाराज भी तुरंत बात बता देते, और भी दूसरे कई संत, आप भी वहां पहुंच सकते हैं। वास्तव में सभी वहां पहुंचे हुए हैं लेकिन वहां का पता नहीं, हर तरंग पानी से जुड़ा है, ऐसे सभी का मन परमात्मा से जुड़ा है, लेकिन बाहर भाग भाग के तुच्छ हो गया। रात्रि को आते हैं तो बेहोशी में अज्ञानता में चले जाते हैं, लेकिन रात को भी अगर होश में आकर परमात्मा के निकट पहुंचो तो आपकी निद्रा योग निद्रा हो जाएगी, आपका कर्म कर्म योग हो जाएगा। इसलिए मुझे 75 साल हो गए ना तो मैं लंबा चौड़ा भाषण या सत्संग विस्तार वाला नहीं करना चाहता हूँ, बस कट टू कट, जल्दी में जल्दी लोगों को फायदा हो जाए। इसलिए ओमकार की साधना, दीर्घ प्रणवा का जाप, अथवा रात को सोते समय दीक्षा में बता देता हूं ऐसे नींद करो, तो तुमको समय कम में जल्दी अनुभव हो जाए, कम समय में तुम्हारे विकार विकार भाग जाए, कम समय में तुम्हारे पाप बाप कट जाए, कम समय में तुम्हारी समस्याओं का समाधान। क्योंकि मेरे पास अब निवृत्ति का जीवन आ रहा है ना, नानक जी 60 साल में निवृत्त हो गए, मुझे 75 हो गए, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी साधक उन्नत हो जाए और फिर मैं एकांत में। जितना आप परमात्मा में विश्रांति पाते उतना प्रकृति में आपका अधिकार जम जाता है, उथल पाथल हो जाता है। जीव की और ब्रह्मवेता की क्या पहचान है? जीव को कुछ भी है तो कर्म करना पड़ता है, भगवान और भगवान को पाए हुए महापुरुष का खाली संकल्प प्रकृति में काम कर लेता है। बरसात नहीं हो रही है बाबा, ऐसा है ऐसा है, बोले अच्छा जाओ इंदिरा को बोल देना गाय करती है, गायों की हत्या है इसीलिए दुखी हो रहा है देश, गायों की हत्या बंद कराओ। बाबा वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी अभी बना हूँ सिंचाई मंत्री और लोग सोचते कि कैसा मंत्री है, काल पड़ गया। बोले अच्छा, मैं बाबा खड़े थे देवरहा बाबा, नाम जानते हैं देवरहा बाबा का, तो हाथ ऊपर करो। मैं तो उनसे मिला था दो बार, बड़ा स्नेह किया था, बड़े ऊंचे कोटि के संत थे। जहाँ खड़े थे बालू में, बोले ले गठरी बांध ले, बालू की गठरी बांधी, तो उनका सेक्रेटरी उठा रहा था, बोले नहीं नहीं ये मंत्री बना है ये उठावे ना, परिश्रम का पता चले इनका काम है। तो मंत्री ने उठाई वो गठरी, गाड़ी में रखी, बोले तेरे पास तो हेलीकॉप्टर है, बड़ा मंत्री है सिंचाई मंत्री, जिस जिस राज्य में अकाल पड़ा है वहां छिटकाव कर देना, हो जाएगी बारिश। और बारिश हो गई। ये तो दिया बालू, बाकी ऐसे भी हो सकता है, उनके महापुरुषों के संकल्प में क्या क्या होता है वो तो वहां कोई नीति नियम नहीं बना सकते कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता इतना होता है, उसकी कोई किताब नहीं लिखी जा सकती। मत करो वर्णन हर बेअंत है, परमात्मा बेअंत है, तो परमात्मा में विश्रांति पाए हुए महापुरुषों की लीला और सूझबूझ भी बेअंत है। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, गुरुवाणी में आता है, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा कर नानक, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी की मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। वाराणसी तो नजीक है यहां से, संत किन्नाराम रहते थे उस समय, तुलसीदास महाराज भी रहते थे, तो काशी के सेठ को संतान नहीं होती थी, सारे उपाय करके थक गया। किसी ने बोला संत तुलसीदास के पास सियाराम जी आते, लखन भी आते, तो उनको बोलो तुम्हारे भाग्य में है कि नहीं, तो भगवान से पूछ के बता देंगे। तुलसीदास को उसने प्रार्थना की, तुलसीदास ने कहा ठीक है सरकार आएगी मैं पूछ के बताऊंगा, तुम द्वादशी को आ जाना। द्वादशी के दिन बैलगाड़ियां फल फ्रूट मावा मिठाई दो बैलगाड़ियां भर के गया कि बाबा प्रसाद कहाँ उतरवाए। तुलसीदास ने कहा प्रसाद नहीं लूंगा, तुम्हारा काम नहीं कर सकता तो प्रसाद नहीं लेंगे, सरकार ने बोला है कि तुम्हारे भाग्य में 10 जन्म तक नहीं है। तो दो बैलगाड़ी लेके जा रहा था, पत्नी ने कहा संतों के लिए निकाली हुई प्रसाद घर में क्या दुकान थोड़ी करना है, चौराहे पे इकट्ठा किया और आओ प्रसाद ले जाओ, भर भर के देने लगा। तो इसमें वो दूध बेचने वाला कोई आहिर, बोले सेठ प्रसाद तो खूब दे रहे हो लेकिन आंखों पे चमक नहीं है, चेहरे पे खुशी नहीं है, प्रसाद बांटने वाला तो प्रसन्न होता है और आप रोते रोते दे रहे हैं, क्या कोई मर गया है क्या? बोले मैं ही मर गया, हजारों निराशाओं में एक आशा थी और वो भी तुलसीदास ने मना कर दी कि तुम्हारे भाग्य, सारी बात बता दी। तब उस अहिर ने कहा दूध बेचने वाले ने, आप चिंता नहीं करो, वाराणसी में गंगा किनारे मिर्गी घाट अभी भी है,
संत किन्ना राम पड़े रहते हैं, वो अघोरी बाबा है। आप जाते आते रहना, जाके सीधा नहीं बोलना कि संतान दे दो, नहीं तो अघोरी सुना देंगे। आते जाते जब वो पूछे कुछ कोई बात हो, वो तो सब समझ जाएंगे। तुम आते जाते रहो, आते जाते आते जाते समय हो गया। किन्नाराम ने कहा, रे सेठ के बच्चे आता है, क्या लाया है? बोले 10 पूरी है। बोले 10 है, लाओ खाया। बोले 10 दिए, जितनी पूरी थी उतने बेटे दिए। अब साल भर में तो 2 बेटे आ गए। भाई ने कहा, तुलसीदास के यहाँ पहले ले जाएंगे, फिर किन्नाराम क्या, पहले तुलसीदास का आता है निवास। तुलसीदास ने पूछा, ये गोद में लिए क्या? भाई ने कहा, नहीं मेरे खून से सींचे गए। आपने तो बोला 10 जन्म तक नहीं आएगा, लेकिन किन्नाराम ने बोला 10 दिए, तो 20% तो पेमेंट हो गया। 2 आ गए ना, तो 100 में से 2 आए तो 20% आ गया ना। तुलसीदास को लगा कि मेरे को तो राम जी ने बोला 10 जन्म तक नहीं है, और किन्नाराम ने बोला 10 दिए, तो 2 तो हो ही गए। प्रभु जी कब पधारेंगे, मैं यही पूछूंगा। प्रभु जी से पूछा तो प्रभु ने कहा, तो तुमने तो पूछा उसका बैलेंस कितना है, उसके भाग्य में है कि नहीं, और किन्नाराम ने तो चिट्ठी फाड़ दी, तो फिर पूरा करना पड़ता है ना। तब से वो कहावत हो गई, जो न करे राम सो करे किन्नाराम, जो न करे राम सो करे किन्नाराम। योग समान बल नहीं, सांख्य समान ज्ञान नहीं, किन्नाराम का योग सामर्थ्य था। तो हनुमान जी को तत्व ज्ञान की महत्ता, योग सामर्थ्य तो हनुमान जी के पास पहले भी था, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना हनुमान जी पूर्णता का अनुभव नहीं होता, तो राम जी की सेवा में लगे। तो मैं आपके जीवन में शरीर स्वस्थ रहे वो तो चाहता हूँ, वो प्रयोग बताता हूँ। मन प्रसन्न रहे ये भी मैं कोशिश करता हूँ, और प्रसन्नता मिलती है आपको। बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान आपका ऐसा हो कि मृत्यु आए उसके पहले आपको अनुभव होना चाहिए कि जो मरता है वो मैं नहीं हूँ, मरता शरीर है, मैं उसको जानता हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चिदाकाश हूँ। ये भूताकाश में हरकत होती है, चित्ताकाश में चेष्टा होती है, लेकिन चिदाकाश विभू व्याप्त, वहाँ फिर वाणी नहीं जाती। ऐसी अनुभूति कि आपको प्यास हो और मैं उसका ज्ञान दूँ और आप उसको सुनकर एकांत में पचा लो, तो यूं हो जाता है। फिर दुनिया की चीजों के लिए तुम्हें अलग से दौड़ना नहीं पड़ेगा, दुनिया की चीजें तुम्हारे पास खिंच खिंच के आएगी। आप मान नहीं चाहोगे लोग मान देंगे, आप यश नहीं चाहोगे लोग यश देंगे। आपको आवश्यकता हो वो चीज वस्तु पहले हाजिर हो जाएगी, आपकी मौज पड़े तो उपयोग करो, नहीं तो कुछ नहीं। चिदाकाश माना सारे ब्रह्मांडों का स्वामी तत्व से आप जुड़ गए। कोई प्रधानमंत्री से जुड़ गया तो पूरी मिशनरी सरकारी उसकी खुशी में लग जाती है। तो प्रधानमंत्री तो क्या है, सारे धरती के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इंद्र के आगे बोने हो जाते, और आत्म साक्षात्कारी पुरुष को इंद्र देखकर उसका सम्मान करता है। ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा, आत्म साक्षात्कारी पुरुष के चरणों में हम आए तो मरने के बाद यमराज भी हमारा आदर करते। आत्म साक्षात्कार इतना ऊंचा चीज होता है, भगवान के दर्शन करने के बाद भी आत्म साक्षात्कार तो बाकी रह जाता है। राम जी के दर्शन तो हनुमान ने कर लिए थे, अष्ट सिद्धि भी थी, फिर भी आत्म साक्षात्कार तो हनुमान जी को करना ही रहा। श्री कृष्ण के दर्शन तो अर्जुन ने किए थे, विराट रूप दिखा, भयभीत हुए, पहले विषाद में गए, लेकिन श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को चिदानंद तत्व का ज्ञान दिया तब अर्जुन को हुआ कि नष्ट मोह स्मृति लब्धवा। तब वो मान लेते हैं कि योगी गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ राजा के शरीर में प्रविष्ट हुए, लड़के का जन्म हुआ, तो विकारी भावना से राजा के शरीर में नहीं घुसे। प्रजा धर्मात्मा है, धर्म लाभ करने के लिए राजा के शरीर में घुसे। तो जो बालक हुआ उसका नाम रखा धर्मनाथ, नाथ संप्रदाय। धर्मनाथ जब 12 साल के हुए तो मच्छंद्रनाथ राजा के शरीर में थे, अपने बेटे को राज तिलक कर दिया और फिर अपने शरीर में आ गए। आज भी प्रयाग के लोग जानते हैं माघ महीने में धर्म द्वितीया मनाते, वो धर्मनाथ के स्मृति में धर्म द्वितीया शुक्ल पक्ष की प्रयागराज में मनाते थे धर्म द्वितीया। तो ये योग का बल है, लेकिन तत्व ज्ञान तो उससे भी ऊंची बात। सारे तीर्थों में उसने स्नान कर लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तप कर लिए, सारे दान दे दिए, सारे पितरों का सदगति कर लिया। जिसने एक क्षण भी ब्रह्म परमात्माओं का ज्ञान सुनकर उसमें विश्रांति पाई। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम। उसने सारे तीर्थ कर दिए, सारा दान दे दिया, सारे यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान में मन को विश्रांति दिलाई। तो जो भी करो तो सभी के रूप में वही परमात्मा चैतन्य चिदाकाश, इससे आपका ज्ञान जल्दी जागृत हो जाएगा, आपका भाव शुद्ध हो जाएगा। जिधर जाना है ना उधर की अभी भावना करो तो जल्दी पहुंच जाओगे। सब वासुदेव है, सब हरि का रूप है। तो मोकलपुर के बाबा ने मारा डंडा तो साधु को, तो बोला था ना ईश्वर की प्राप्ति किए बिना नहीं जाऊंगा। ये चंद्रमा, ईश्वर बोलते मैं चंद्रमा हूं, मैं सूरज हूं, मैं हवाएं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, पृथ्वी में गंधगुण मेरा है। तो उसको तो मानता नहीं, नया भगवान कौन चाहे दार। उसको पता चल गया वास्तव में सब वासुदेव वासुदेव। तो ऐसा नहीं कि सब वासुदेव हम उससे अलग है, हमारे सहित सब वासुदेव है। तरंग को मारो डंडा और उसको बोलो तू पानी है, वो तो पहले ही थी, पता चल गया तो अब मैं समुद्र हूं। ऐसे ही वो साधक बोले हाँ मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य हूं, आनंद हूं, मैं अमिट हूं, मेरे को कोई मार नहीं सकता। ये शरीर तो जिंदा नहीं रहेगा, फिर भी करोड़ों शरीरों में मैं हूं, और सारे शरीर महाप्रलय हो जाए फिर भी मैं रहता हूं, ऐसा अनुभव होता है। मरने का भय नहीं होता, जीने की वासना नहीं होती, मान की इच्छा नहीं होती और अपमान से पीड़ा नहीं होती, सुख की लोलुपता नहीं होती और दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। ऐसे आप जीवन मुक्त हो जाते, जीते जी मुक्त हो जाते। पांच प्रकार की मुक्तियां होती है, चार प्रकार की मुक्तियां तो मरने के बाद होती है, वो साधारण मुक्ति, लेकिन जीवन मुक्ति तो जीते जी होती है, वो महान मुक्ति है। आप पूजा करते अच्छा है, जो भी सत्कर्म करते, लेकिन ईश्वर के होकर करोगे ना तो बड़ा सरल हो जाएगा, आपकी त्रुटियां ईश्वर निकाल देंगे। और आपको जैसे बच्चा अपने तरफ से चलता है अच्छा है, लेकिन पिताजी की उंगली पकड़ता है तो सुरक्षित होता है, और पिताजी जब हाथ पकड़ ले तो बच्चा और सुरक्षित हो जाता है। ऐसे मैं भगवान का हूं, हम भगवान का स्मरण करते हैं तो समझो भगवान की उंगली तो पकड़ी, लेकिन बीच में हमारी आदतें हमारे विकार हमको गिराते रहते कि प्रभु हम तुम्हारे हैं। तुलसीदास ने ऐसे ही किया, भगवान के गले पड़ गए। आप भी भगवान के गले पड़ो। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा हृदय तेरा घर है, और इसमें चोर बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चिंता। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताई बसे आई बहु चोरा, बहुत चोर घुस गए। मैं एक कल अमित बट मारा, मैं अकेला यात्री हूं और ये विकार पांच पांच है मेरे को गिराते रहते, कोई सुने नहीं मेरी पुकारा, रघुनायक बेगी करो संभारा, ये प्रभु जल्दी मेरी संभाल लो, नहीं तो फिर भगवान को डांटते भी है, देखो भक्त कैसा, नहीं तो अपयश होगा तुम्हारा। बोले भगवान का साधु भगवान का भक्त होकर ऐसा करता आपका अपयश होगा, मेरे को वो भी चिंता है। कैसे कैसे भक्त और भगवान स्वीकार कर लेते। मैं एकल अमित बट मारा, को सोने नहीं मोर पुकारा, रघुनायक बेगी करो संभारा, जल्दी मेरी संभालो, नहीं तो अपयश हो ही तुम्हारा। अरे साधु हो कैसा करता, अरे पुजारी हो कैसा करता, तो पुजारी साधु तो भगवान के नाम से होते, अब मेरे से ऐसा हो तो आपका इज्जत का सवाल करो, जल्दी मेरे को बचाओ। भगवान तोतली मुतली भाषा भी अपने वाले की मान लेते, तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये निश्चय जितना दृढ़ होगा ना 95% तो साधना उसमें हो जाती, बाकी रही 5%, उसमें 3% तो आप अनुष्ठान और सत्संग आ दिया, 2% विश्रांति योग बस। और विश्रांति योग की ऐसी तरकीब है कि आपको लगेगा अरे रे हम इतना दिन क्या कर रहे थे, आप रोज नींद करते लेकिन नींद को विश्रांति योग बना लो, रोज कर्म करते कर्म को कर्म योग बना लो, बस कर्म किए बिना तो नहीं रह सकते उसमें कर्म में योग जोड़ दो, नींद किए बिना नहीं रह सकते उसमें नींद योग जोड़ दो, बस नींद कंपलसरी है कर्म भी कंपलसरी है, जो स्वाभाविक होता है उसमें खाली योग जोड़ दो बस, मुफ्त में दोनों हाथ में लट्टू, दाढ़ी की दाढ़ी बाबा का बाबा, मेरे को तो ऐसा मिल गया खूब, दाढ़ी की दाढ़ी बाबा का बाबा मुफ्त में मिल गया खजाना। कंगाल आदमी अरबोंपति होना चाहे तो मर जाएगा मेहनत कर करके, लेकिन अरबोंपति के गोद में चला गया तो उसी दिन अरबोंपति हो गया, ऐसे आप तो भगवान के गोद में चले जाओ।